ओम शांति। आज हम मार्गदर्शन कार्यक्रम में चिकित्सकों के बीच उपस्थित हैं और इन चिकित्सकों की निजी समस्या से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी समस्या का समाधान, आध्यात्मिक चेतना संपन्न प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी देवी देंगी, जो अपने ज्ञान और अपने अनुभव को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि जब कभी भी मौका मिलता है और जब कभी भी इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है देश की सीमा से बाहर भी निरंतर विभिन्न केंद्रों पर जाकर व्यापक जन समस्या का समाधान करती रहती हैं। ये चिकित्सक भी उस ईश्वर पर स्वयं से ज्यादा भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा और अपने हुनर का तात्कालिक लाभ देने के बावजूद अंततः उसी परमेश्वर को, उसी परमात्मा को स्मरण में लाते हैं। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। इनकी पेशा के मद्देनजर इनकी भूमिका और इनका होना आप मार्गदर्शन के अंतर्गत सबसे पहले अपने संवाद में, फिर इनकी समस्या के समाधान की दिशा में हम आपसे ही उन्मुख होंगे।
आज आप सभी चिकित्सक वर्ग इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि आप हैं दुख हरता सुख करता, ईश्वर को भी यही कहा जाता है दुख हरता सुख करता, क्योंकि कष्ट मिटाने के लिए लोग आपकी ही शरण में आते हैं, आपको ही याद करते हैं और उनके कष्ट मिटते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज जो लोगों के तन में इतने रोग बढ़ते ही जा रहे हैं, रोज आना कुछ नई नई बीमारियों के नाम सुनते ही रहते हैं, उसका कारण मनुष्य का मन भी है। मन के कारण अनेक कष्ट ऐसे आते हैं जिसका दवा देने के बाद भी उपचार नहीं होता, वो जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि उसका कारण तन नहीं मन होता है। दर्द की दवा आप देते हैं लेकिन उनके मन में कई दुख भरा है, मानसिक कष्ट भरा है, इसके कारण उनको दर्द हो रहा है। उसकी दवा, दर्द की दवा मिलती है लेकिन दुख की दवा रह जाती है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति जो मन का इलाज करती है, मन सदा तनाव मुक्त रहे जबकि परिस्थितियां कदम कदम पर तनाव उत्पन्न करने वाली हैं। एक परिवार को ही देख लीजिए, एक दूसरे का स्वभाव आपस में नहीं मिलता, व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, रोज आना घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या कोई व्यक्ति व्यसन के वश हो जाता है, नशा खाने लग जाता है, सारा परिवार उससे दुखी हो जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट से सारा संसार भरा है और इसके कारण शरीर में रोग है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो दवा ना लेता हो या उसको उसकी आवश्यकता ना पड़ती हो। ऐसा लगता है जितने संसार में मनुष्य हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक शारीरिक पीड़ा से जूझते ही रहते हैं, शरीर में एक न एक रोग आते ही रहते हैं। हम अगर उनके मन का इलाज करें तो कम से कम आधा इलाज तो हो ही जाता है और बाकी इलाज तो आप कर ही रहे हैं और उससे उनका उपचार भी होता है। हम समझते हैं मन सदा प्रसन्न चित्त रहे। आज लोग कहते हैं अंतर से खुशी जागृत नहीं होती, हंसते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, मन में खुशी नहीं होती। वो खुशी कैसे प्राप्त हो, वो मन के कष्ट कैसे मिटे, इसके लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग प्राप्त करने से अगर मन में दुख मिटा सकते हैं तो तन का इलाज थोड़ी दवा से हो जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन दुख के कारण वो रोग उसका कंटिन्यू करता है, चलता ही रहता है। इसलिए हम समझते हैं मेडिटेशन भी एक मेडिसिन है। अगर उसको मेडिसिन के तरह प्रयोग में लाना सिखा दिया जाए, मन की एकाग्रता, आत्मविश्वास, संतोष, अगर ये गुण आध्यात्मिकता द्वारा जागृत किए जाएं, इनसे उनके मन का उपचार किया जाए, तो आज डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो दवा से कम और आध्यात्मिकता के द्वारा अधिक ठीक होती हैं। बहुत से डॉक्टर्स हमारे पास कई पेशेंट भेजते हैं जो डिप्रेशन के शिकार ठीक नहीं हो पाते, वो यहां आकर ठीक होते हैं क्योंकि यहां मन का इलाज है। इसलिए हम समझते हैं कि उस तन के साथ साथ आप सभी मन का भी इलाज करें, दवा देने के साथ साथ दुआएं लेने की भी ट्रेनिंग दें। जब दवा काम नहीं करती तब दुआएं काम करती हैं। हमारी बड़ी दादी जी कहती है दुआओं का स्टॉक इकट्ठा करो। जब दवा काम नहीं करेगी दुआएं काम करेगी, आशीर्वाद काम करेंगे। सबसे आशीर्वाद लो और उसका स्टॉक इकट्ठा करो। हर विपत्ति में, हर समस्या में वो दुआएं काम करेगी और आपको उन उलझनों से बाहर निकाल देगी।
हमारा मन वैसा ही मन है जैसा सबका मन होता है, दुखी भी होता है, सुख भी रहता है और वह चंचल भी है। मुझे सबसे मुश्किल ये लगता है हमको अपने जीवन में, हम आश्चर्य करते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को देख कर करके भगवान बुद्ध का मन विचलित हुआ, एक बीमार को देख करके उनका दिल दहल गया और एक मृत व्यक्ति को देख करके वो आत्मा से अशांत हो गए और खोजने चले शांति के लिए। लेकिन हम डॉक्टर जो रोज दिन भर बीमार मरते वृद्ध व्यक्ति को रोज देखते हैं, हमारा मन क्यों नहीं ऐसा होता है, हम उसके प्रति क्यों नहीं ऐसे अभ्युत होते? मेरा प्रश्न यह।
दो प्रकार का वैराग होता है। एक वैराग ऐसा होता है जो परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न होता है। आप उस परिस्थिति को देखते देखते, उपचार करते करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि आपको वो बीमारी, उनका ऑपरेशन, उनके कष्ट कोई बड़ी बात नहीं लगते, आप उसके अभ्यस्त हो गए हैं। अब दूसरे प्रकार का वैराग चाहिए जिसको कहा जाता है ज्ञान द्वारा वैराग, और वैराग द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति। अरे हमें समझ है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। हम इस जीवन में आए, आप जब ऑपरेशन करते हैं तो शरीर अलग है और उसके अंदर जो चेतना है वो अलग है, उसे अच्छी तरह महसूस करते हैं, केवल शरीर का उपचार करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, वो आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। अच्छी तरह से आप उसे जान गए हैं, अच्छी तरह से उसे देख लिया है, लेकिन आत्म अनुभूति करने के लिए उसका ज्ञान चाहिए। जिनको ज्ञान द्वारा वैराग होता है वो वैराग कभी मिटता नहीं है। वैराग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर एक राह पकड़ ले, उसको हम वैराग नहीं कहते। वैराग का अर्थ है हर चीज जो है जैसी है उसे वैसा जान ले और जान कर चले, यही सही वैराग है। ज्ञान का अर्थ भी यही है, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना ज्ञान है, और जो चीज जैसी है उससे बहुत अधिक भावपूर्ण होकर जानना भक्ति है, और जो चीज जैसी है उसको वैसा जानकर व्यवहार में लाना वो वैराग है। इसलिए हम समझते हैं कि वैराग अंदर ऐसा उत्पन्न होना चाहिए जो समझ के आधार से, नॉलेज के आधार से, कि मैं कहने वाला कौन, हम अपने आप को पहचाने और अपनी आत्मशक्ति को जगाएं, आत्मा की जो योग्यताएं हैं, जो शक्तियां हैं वो जागृत हो और उसका संबंध उस सुप्रीम पावर से जुट जाए। और सुप्रीम पावर से जुटने के लिए कोई वैराग की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है, क्योंकि वो भगवान सृष्टि का रचता हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, उसी का कार्य करने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप उन्हीं का कार्य कर रहे हैं, वो कल्याणकारी है, आप कल्याण का कार्य कर रहे हैं। वो दुख हरता सुख करता है, आप वैसा ही बनकर कार्य कर रहे हैं। वो रहम दिल है, आप भी रहम करते हैं। वो क्षमा करता है, आप भी क्षमा करते हैं, आप भी उसका उपचार करते हैं, आखिर तक भी उसके कष्ट मिटाने की कोशिश करते हैं। यही कार्य तो ईश्वर का है, तो उसकी संतान होकर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ कार्य हमको आत्मा के लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए, आत्म अनुभूति, स्वदर्शन, स्वचिंतन, इसके द्वारा जो सेटिस्फेक्शन होगी, जो शांति और आनंद और प्रेम प्राप्त होगा सुप्रीम पावर से, वो अपने काम भी आएगा और जहां जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उनके काम भी आएगा। इसलिए ऐसे वैराग की आप आशा नहीं करें जो उनको देखकर वैराग आ गया। हर एक को देखकर वैराग नहीं आता, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ी आंख है, ज्ञान हमारा तीसरा नेत्र है। अगर उस तीसरे नेत्र से देखते हैं तो सारा कलयुग तमोगुण से भरा है। इस सारे से ही वैराग की जरूरत है, इससे अटैचमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। यहां तो कर्तव्य को समझकर और उसका पालन करने की जरूरत है।
परिस्थिति के साथ अनुकूलित हो जाना और परिस्थिति से परे हो जाना, कर्तव्य बोध के साथ जुड़कर काम करना और सहज वैराग्य के वशीभूत होकर उसके निदान की दिशा में आगे बढ़ना।
जब स्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो, जैसा हम चाह रहे हैं काम वैसा नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण जो इरिटेशन होता है वो जो है हमारी पोटेंसी को बहुत कम कर देता है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए?
ये तो निरंतर होता ही है कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। और ये आज हो रहा है, कल हुआ था, नहीं, ये अंत तक होता ही रहेगा। ये परिस्थिति भिन्न भिन्न रूपों से आती ही रहेगी, इसलिए हमें अपनी स्थिति बनाने की ओर ध्यान देना है। किस तरह से ये विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आए और हमारा मन की स्थिति उसको इस तरह से देखे जैसे कि कोई ड्रामा देख रहे हैं। जब आप ड्रामा की स्टेज पर या आप सामने कोई पिक्चर देख रहे हैं तो आप साक्षी हो जाते हैं, और साक्षी भाव से देखने के कारण उसका असर आपके ऊपर नहीं होता है। इसी तरह से जो आने वाली परिस्थितियां हैं, हम चाहते हैं इस व्यक्ति के लिए हमने इतना काम किया है, इसको हमारे प्रति सम्मान चाहिए, लेकिन उतना सम्मान नहीं रखता। जो काम आप कराना चाहते हैं वो कार्य करता नहीं करता, तो उसको करने का एक तरीका ये है, जहां आप कार्य कर रहे हैं आपका जो स्टाफ है उसको आप इकट्ठा बिठाएं, और बिठाकर सबसे पहले उसके सामने उन बातों को रखें जो उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जहां उन्होंने एक्यूरेट काम किया है, जहां उन्होंने आपकी बात को समझकर काम किया है। आज हर व्यक्ति शाबाशी चाहता है, हर व्यक्ति प्यार चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, और हम क्या करते हैं? जब अच्छा करता है तो चुप रहते हैं, जब कहीं मिस्टेक करता है तब बोलते हैं, ऐसा होता है ना? और इससे वो उत्साहित नहीं होता। हमें उन्हें कुछ देना है, प्यार भी देना है, शाबाशी भी देनी है। जिस दिन उसने अच्छा किया उस दिन उसको अच्छा जरूर कहना है। अगर ऐसा करें तो हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती जाएंगी। और ये भी याद रखते हैं कि अनुकूल नहीं भी होगी तो भी आपको तो कार्य करना ही है, इसलिए अपने साथियों के अंदर वो शक्ति भरते हुए अगर हम अपने मन को सदा प्रसन्नचित रखने की ट्रेनिंग ले लें, पॉजिटिव थिंकिंग से ही सदा मन प्रसन्न रह सकता है। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लोग हमारी इच्छा अनुसार चलेंगे नहीं, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे नहीं, हम अच्छा काम करेंगे लोग हमारी निंदा करेंगे, हम इस चीज को मान कर चलते हैं। और फिर सदा प्रसन्न रहें की इच्छा कम, उनको प्रसन्न करने की इच्छा ज्यादा। अगर इसके लिए हमारे अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर आती है, हम अपने साथ काम करने वालों को सेटिस्फाई कर सके अपने व्यवहार से, अगर कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि धीरे धीरे वो परिस्थिति अपने अनुकूल होंगी और उसके प्रभाव से हम मुक्त होंगे। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है हमारे सामने तो उससे हम प्रभावित नहीं होते। इसके लिए एक आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, एक स्पिरिचुअल पावर चाहिए। मेडिटेशन इसमें बहुत सहयोगी है। इससे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हम सदा प्रसन्न रहेंगे, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, हम किसी का करेक्शन नहीं करेंगे। तीन चीजें हम सबको कहते हैं कि ना करें। पहला, मनुष्य बन गया है करेक्शन माइंड, छोटी छोटी बातों में हम करेक्शन करते ही रहते हैं, कहीं जरूरी भी होता है तो भी। पहला, करेक्शन माइंड हो गया है। दूसरा, कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को चुभ जाती है, उसके दिल को लग जाती है। तीसरा, क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमें तीनों को कहने का तरीका बदलना है। हम अपने करेक्शन माइंड को चेंज करें। कमेंट, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तुमने हमेशा ऐसा ही किया है, इस बोलने को छोड़कर तुमने हमेशा अच्छा किया है और आज भी करके दिखाओगे। नहीं कर रहा है तो भी हम उसे इतना अच्छी बात कहें कि उसको प्रेरणा मिले और वो हमारा सहयोगी बनकर पहले से भी अच्छा होकर हमारे सामने आए। आप तन का इलाज करते हैं, लेकिन साथ में रहने वालों के मन का ट्रीटमेंट पहले चाहिए। इसलिए हम समझते हैं, अगर ये तीन बातें हम अपने अंदर चिंतन कर लें कि हमको कैसा कमेंट करना है, हमको कैसा क्रिटिसाइज तो करना ही नहीं है, जो मेरे साथ रहने वाले हैं, जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, अपना मानकर, जैसे किसी अपने को कान में कुछ कहा जाता है, अगर ऐसा भाव हम दिखाते हैं, जागृत करते हैं, तो बहुत सी हमारी समस्याओं में परिवर्तन आ जाता है।
विभिन्न रोगों के प्रत्यक्ष समाधान के लिए कई जाने माने फिजिशियन भी हैं। हम एक ऐसे फिजिशियन से उनका प्रश्न जानना चाहते हैं। आज दीदी के लिए उनके भीतर ऐसा कौन सा प्रश्न है, जबकि वे चिकित्सा कार्य से निकलने के बाद सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि दिखलाते हैं और जब कभी भी स्वास्थ्य शिविर में सहयोग देने का अवसर मिलता है उस अवसर को गवाते नहीं हैं और अपने तई एक मानवीय व्यवहार भी निरंतर करते चलते हैं। लेकिन कदाचित समाज में उन्हें अमानवीयता का भी शिकार होना पड़ता होगा। अब सांस्कृतिक से तनावग्रस्तता की स्थिति भी आती होगी, और कुछ न हो परिवार में ही किसी के क्षणिक व्यवहार से उन्हें क्षोभ भी होता होगा। ऐसे में वे एक प्रकाश चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं और अपने बीच उपस्थित फिजिशियन डॉक्टर एनकेपी सिंह से हम जानना चाहते हैं।
मेरे मन में सिर्फ एक द्वंद प्रश्न रहता है हमेशा कि मैं कैसे सबको खुश रख सकूं। लेकिन जब भी किसी से संवाद करता हूं या किसी से मंत्रणा करता हूं, कदाचित कभी न कभी किसी तरह से, जबकि अभिप्राय नहीं रहता है, उस तरह की मनसा नहीं रहती है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो सामने वाले लोग हैं उसको दूसरे पहलू से सोच करके दुखी हो जाते हैं। वैसे कंडीशन में अपना कितना भी सफाई देने के बावजूद भी वो इस चीज को मानते नहीं है, तो इसके ऐसे परिस्थिति में ऐसी कौन सी व्यवहार करनी चाहिए कि पुनः वो हमारी बातों से प्रभावित होकर के हमारे तरफ उन्मुख हो जाए, वो हमारे ग्रीवांसेस नहीं रखे हमारे साथ, हमारे प्रति उनका प्रेम भाव जागृत हो जाए।
सदा खुश रहना और सदा खुश करना, ये दो बातें हैं। सदा खुश करने की एक ही कला है। हम सब लोग कहते हैं हम सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कहते हैं किया जा सकता है। उसकी एक ही कला है। वो कला ये है कि हम अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के गुण देखें, उसकी विशेषताओं को देखें, उसके अंदर जो विशेष क्वालिटी है उसको देखें। अवगुण भी हैं, लोग गलतियां भी करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अगर उस पर है और हम उसको वर्णन भी करते हैं, आप में ये बहुत अच्छी कला है, आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी विशेषता है, और जब कोई कार्य करता है तो हम उसे अच्छा कहे बिना नहीं रहते। हमने देखा है सारी उम्र मेहनत करके कमाकर लोग अपने परिवार को हर आवश्यकता पूरी करते हैं, फिर भी लोग असंतुष्ट रहते हैं। उसको संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, महिमा। हम महिमा नहीं करते, हम प्रशंसा नहीं करते। अगर कहीं कमी रह जाएगी तो बोले बिना नहीं रहते, वहां जरूर बोलेंगे। लेकिन हर अच्छे कार्य को अच्छा कहने में कंजूसी कर जाते हैं। भोजन बहुत अच्छा बनाया, जिस दिन बहुत अच्छा बनाया उस दिन नहीं कुछ बोलेंगे, जिस दिन नमक ज्यादा हो गया उस दिन तो जरूर बोलेंगे, ऐसा होता ही है। लेकिन अच्छे कार्य को अच्छा कहना, प्रशंसा करना, हरेक की रियल प्रशंसा, नकली बात नहीं, हरेक में गुण है, अगर हमारी महिमा करने की नेचर बन जाए तो हम समझते हैं कि हमारे और दिनों से वो दिन ज्यादा बेटर होगा। एक बार की बात है, इसी विषय की चर्चा हो रही थी और एक शिविर में हमने लोगों को एक होमवर्क दिया। हमने कहा कल सुबह से रात्रि तक हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, आप इसका प्रयोग हर एक के सामने करना, हर एक के सामने, कोई वंचित ना रहे। वो एक शब्द कौन सा था? आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, या आपने बहुत अच्छा काम किया। किसी तरह से हर एक को अच्छा कहना, बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, कोई लेबर हो, मिस्त्री हो, कोई भी आपके संपर्क में है, एक व्यक्ति भी मिस नहीं हो जाए। लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, बहुत इजी बात थी, आसान थी। कुछ लोग हमारे को अपना अनुभव सुनाने के लिए आए, उसमें दो व्यक्ति ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम किसी के घर में लगभग 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन घर की मालकिन ने कभी हमको एक गिलास पानी नहीं पूछा। आज जब हम गए तो दरवाजे पर ही मिल गई, बाहर गेट पर। हमने सोचा कि दीदी ने कहा सबको अच्छा कहो, इनको हम क्या अच्छा कहें, हमको सोचना पड़ा। सोचने के बाद उन्होंने उनको कहा, वो बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें वो काम करते थे, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ काम करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने उनका परिचय पूछा, गांव पूछा, कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरा डिटेल जानकारी उन्होंने की। इसके बाद कहा कि हम काम में लग गए। एक दो घंटे के बाद उन्होंने हमको नाश्ता भेजा, चाय भेजी, जो इतने दिनों में उन्होंने नहीं देखा था। तो ये देखा गया, हर व्यक्ति की एक प्यास है प्रशंसा। प्रशंसा हमारी बुद्धि का भोजन है, जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं ऐसे बुद्धि को भी कुछ भोजन चाहिए, कुछ खुराक चाहिए, वो हम नहीं देते हैं। खाना पीना खर्चा सब देते हैं, लेकिन बुद्धि की जो खुराक है वो नहीं देते हैं। इसलिए मैंने उन्हें 10-15 वाक्य लिखवाए कि आप रोज एक वाक्य यूज करें, जैसे आप बहुत लकी हैं। मैंने सुबह से रात्रि तक सबको कहो, लकी तो है, आप में बहुत आत्मविश्वास है, आप बहुत एक्यूरेट हैं, आप अपने कार्य के प्रति बहुत अलर्ट हैं, आप बहुत कर्मठ हैं, बहुत विश्वास जीतने वाले हैं। ऐसी ऐसी 8-10 बातें लिखो और रोज एक एक वाक्य को यूज करो, क्योंकि इसकी आदत नहीं है, इसे आदत बनानी पड़ेगी। आप भी करके देखें, आपको इसका लाभ महसूस होगा कि केवल किसी को अच्छा देखना, किसी को अच्छा कहना, उसकी प्रशंसा करना एक ऐसी ये कोई बनावटी चीज नहीं है, ये रियल है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि मनुष्य की बुद्धि को इस खुराक की जरूरत है, ऐसा नहीं समझते। हम ऐसा समझते हैं, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है एक शब्द महिमा। हमारे जीवन का दूसरा नाम है महिमा। पहले महिमा किसकी करें? अपनी। मैं कौन हूं? मैं बहुत लकी हूं, मेरे ऊपर भगवान। अपने को कहिए, प्रतिदिन कहिए, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, वो मेरी जल्दी सुनता है। मैं जब कोई कार्य करता हूं, वो आने आकर उस कार्य को सफल कर देता है। इस तरह से अपनी महिमा पहले अपने मन में करें, इससे आत्मविश्वास जगेगा। एक स्टेज है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जगेगी। दूसरा महिमा परमात्मा की। आप महिमा के सागर हैं और मैं आपका पुत्र हूं, आपका कार्य करने के लिए खड़ा हूं। मैं करणहार हूं, आप करावनहार हैं। आइए इस कार्य को आप सफल करें।
चिकित्सा का क्षेत्र ईश्वरीय सेवा का क्षेत्र होता है और ईश्वर की जैसी भूमिका होती है, ईश्वर का जैसा स्वरूप होता है, उस स्वरूप को तमाम चिकित्सकों को अख्तियार करने की जरूरत होती है। रानी दीदी ने आपको निर्देशित किया और रानी दीदी के स्नेह सानिध्य में सहज संवाद से हम अपने को लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका और आप तमाम चिकित्सकों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।